نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسلمان بنایا، پھر اپنے نبی کا امتی بنایا، اور آج ہم اس اندھیروں کے دور میں روشنیوں کی تلاش میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج کا یہ سیشن شروع کریں گے کہ یہ میرے سمیت بہت ساروں کے لیے روشنی کا پیغام بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کبھی آئے گا. ہمارا اس پر ایمان ہے. صبح و شام 2 بلین کے قریب مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں وہ شامل ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں تو ہمارا شاید دم گھٹنے لگے یہ سوچ کر کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ ہوتے تو کیا ہوتے، ہمارا کیا معاملہ ہوتا، اور ہم واقعی کسی جنگل میں یا صحرا میں بھٹک رہے ہوتے بدوؤں کی طرح. وہ حالات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے دنیا میں تھے، اگر آپ ان سب ہی کو ذہن میں لے آئے، کسی نہ کسی جگہ تو آپ نے بھی پڑھا اور سنا ہی ہوگا، تو آپ کو اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے کٹھن حالات میں روشنی کی ایک نوید بنا کر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یقیناً مہینہ تو وہ ربیع الاول کا ہی تھا، دن کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا چراغ بنا کر جس انسان کو دنیا میں بھیجا، اور جو نور ہدایت بن کر آئے تھے، آج امت مسلمہ ان سے کتنی کو واقف ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محبتوں کے دعوے تو کرتے ہی رہیں لیکن ہمیں اپنے نبی کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. اور میرا گمان ہے کہ سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سیرت کی کتاب، کوئی آپ کی لائف ہسٹری کے بارے میں نہ پڑھ چکا ہو. کیونکہ ممکن کیسے ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان کے تو حالات جاننے اور ان کی پسند ناپسند جاننے کے لیے لوگ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ محبت جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت ہی معروف اور مشہور کتاب الرحیکم مختوم کو آپ کے سامنے لاتے ہیں. اس وقت آپ کے لیے جو حصہ منتخب ہوا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، اور اللہ کرے کہ اس میں بہت ساری برکتیں ہوں، وہ ہے غزوہ تبوک. آئیے ذرا تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں. اور آج تو یہ چیز پڑھ کر سن کر ہم نے صرف اپنا ذہن سیٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف بھی ہیں، آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنی کچھ پڑھا آپ کے بارے میں. تو رحیق مختوم کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے، ایوارڈ وننگ بک ہے، شاہ فیصل ایوارڈ ملا اس کو، اور بہت ہی معروف رائٹر صفی الرحمن مبارک پوری صاحب اس کتاب کو پائل اپ کرنے والے تھے. سیرت لکھنی نہیں پڑتی، بس سیرت کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نام بالکل نیا لگتا ہے کہ یہ نام کیا ہے. تو الرحیق المختوم قرآن پاک میں لفظ ہے، شراب نچوڑی ہوئی. یعنی اگر آپ اس کے لفظ کے اندر جائیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پھلوں کو جب جوس کی شکل میں نکالا جاتا ہے تو بہت تھوڑا سا پھل نکلتا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں اور ان کی محنتوں کا ہم تو کیا اندازہ لگائیں اور کیسے لگا سکتے ہیں. اس کو تو ایک سائٹ پہ کرتے ہوئے صرف اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی کوششوں اور آپ کے دین کے لیے کیے ہوئے کاموں اور پھر اس سے جو کارنامے ہوئے، اس کا بس ایک کانسنٹریٹ قسم کا سیرپ پینے والے ہیں. اور الرحیق مختوم وہ کتاب ہے کہ جو ضرور ایک بار اپنے پڑھنے اور سننے والے کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا میرا بھی گول ہے. کیا میری خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں؟ तो फिर यकीनन आपकी सीरत को जानना हमारे लिए सआदत होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा आपके अकवाल और अफ़ाल और अख़लाक़े करीमाना का नाम है। सीरत सीर से है सैर करना, गोया के पढ़ने और सुनने और पढ़ाने और बताने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सैर करता है। और हिस्टोरिकल बुक्स का यही फ़ायदा होता है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं ये तो भूल ही जाते हैं, आप या तो मक्का में होंगे या मदीना में होंगे। जैसे आज हम सीरत का ये बाब पढ़ते हुए अपने आप को तबूक की तैयारियों में मसरूफ़ पाएंगे और इंशाल्लाह इसमें बहुत कुछ है। फिर इसी तरह से तुलुए इस्लाम से ही मुसलमान सीरत तय्यबा की नशर व इशात में अनथक कोशिश करते रहे। ये बहुत ही प्यारा मज़मून रहा, हमारे असलाफ इसके लिए बहुत बेचैन रहते थे। और ऐसी ही एक कोशिश सीरत नबवी की मशहूर व मारूफ किताब अर-रहीकम मख्तूम आज हमारे हाथों में है। अबू सईद अल-खुदरी रदी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने किसी बेलिबास मुसलमान को लिबास पहनाया, अल्लाह ताला इसको जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। और जिस मुसलमान ने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया, अल्लाह ताला इसको जन्नत के फलों से खिलाएगा। और जिस मुसलमान ने किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाया, अल्लाह ताला इसको रहीकुम मख्तूम यानी मुश्क के जायके वाली शराब पिलाएगा। आप लोग शराब को बस इस वक्त ये समझिए कि मशरूब, ड्रिंक के मानों में। उर्दू में चूंकि लफ्ज़ शराब उसी शराब के लिए आता है जिसको हम बुरे मानों में जानते हैं, लेकिन अरबी में देखें तो शरीबा या शरूबू शराबुन पीने वाली चीज़। जैसे आपने कभी मशरूब मशरक और इस तरह के शरबतों के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ा होगा। ये रिवायत जो है ये अबू दाऊद की है 1672। तो आज इस किताब को पढ़ने का मकसद, पूरी दुनिया में लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, इसी में प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट जो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को आगाह किया जाए। इसको पढ़ेंगे अपने मुहासबे के लिए। आज मुसलमान क्यों परेशान हैं कभी हमने सोचा? अगर आज थोड़ी सी दुनिया में इधर से उधर बातचीत होने लगे तो कोई नई बात नहीं है। असल चीज़ जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से होते हुए आज तक हम तक पहुंची, और हमारे असलाफ का भी यही अमल था कि जितना कोई फितना आता, कोई आजमाइश होती, उतना तमस्सक बिल कुरान वल हदीस व सीरा करते। उनको इस चीज़ की फ़िक्र लगी होती थी कि हम अपने नबी के बारे में जानें ताकि दूसरों को बताएं। जब हम खुद नहीं जानेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे? आप किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं? आज भी आप देखिए पूरा मीडिया मार्केटिंग के नाम पर क्या कुछ नहीं ऑफर करता। ये कभी हो सकता कि आप किसी ऐसे बंदे की हिमायत करें जिसको आप जानते नहीं? सिर्फ एक जज्बाती वाबस्तगी अपनी जगह। ये तो बात 100% सच है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमान के खून में रची हुई है। नींद में मदहोश शख्स को भी अगर पूछे कि क्या तुम नबी से प्यार करते हो, डू यू लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 मिनट का ताकुफ़ किए बगैर कहेगा हाँ। हत्ता कि अगर कोई गुना से गुना में शराब में भी जा चुका है तो उस नशे में भी वो ये नहीं भूलता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। लेकिन क्या वजह है कि आज हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हीं के बारे में नहीं जानते? और दुनिया में फितने उठते थे, उठते रहेंगे, और आने वाले दौर का तो नाम ही फितनों का दौर है। तो क्या फिर आप और मैं ऐसे वक्त में सोते रहेंगे? क्या ज़रा सी देर में इधर से उधर आंखें खोल कर देखेंगे, घुमाएंगे और जब सुकून हो जाएगा तो सो जाएंगे? आज जो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे और प्रोटेस्ट और ऐसी बातें कर रहा है, क्या ये ख़त्म हो जाएंगी जब सुकून हो जाएगा? क्या हम सिर्फ उसी वक़्त जागते हैं जब कोई हमें हिलाता है? क्या इस सोती हुई मोहब्बत का अंदाज़ा करना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी नहीं? मुमकिन नहीं है कि वो हमारे सोने को जगाने के लिए पत्थर मारते हैं कि मुसलमानों तुम इतने पुरसकून हो के क्यों सो रहे हो? तुम्हें तो अल्लाह ने कुन तुम खैर उम्मत इन उखरीजत लिन नास बनाया था। एक तरफ रबीउल अव्वल का महीना जिसमें नबी सल्लम के नाम पे मोहब्बत भरी महफिलें सजती हैं, और दूसरी तरफ कई और चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या आपको मुझे ऐसे वक्त में सो रहना है, जागना नहीं? चैलेंजेस का जवाब गुस्से से नहीं देना, रिएक्शनरी नहीं बनना। तकवा और सब्र, ये दो लफ्ज़ थे 13 साल मक्का के मुसलमानों पे जो आजमाइशें टूटती रहीं, बार बार आकर जियाले पूछते थे अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह, अल्लाह के नबी कब मदद आएगी, अल्लाह के नबी हालात कब बदलेंगे? तो आप क्या कहते थे? अल्लाह इन्ना नसरुल्लाह ही करीब, क्योंकि उनका ईमान पुख्ता था। कुफ्फ अईदियकुम के साथ हाथ रोके हुए थे, रिएक्शनरी नहीं बनना। तकवा इख्तियार करो और दीन से जुड़ जाओ। आप देखिए कि आप जहाज़ में होते हैं और जहाज़ स्मूथ चले तो आप आराम से बैठे होते हैं, लेकिन जूं ही ज़रा से झटके आते हैं कोई एयर गैप्स आते हैं तो वो क्या कहते हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, फिर हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। तो ये सीट बेल्ट बांधना है जो इस वक्त हम नबी सल्लम के सहाबा की कोशिशों को देखने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक गज़वे तबूक होगा और इंशाल्लाह इसी को आगे तक लेके चलेंगे, विसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। कम अज़ कम इस एक आखिरी दौर को ही देख लीजिए कि अल्लाह के नबी और आपके असहाब ने क्या कोशिशें की, क्या मेहनतें की, कैसे धमकियाँ मिलती थी और क्या उसके जवाब थे। एक एक लफ्ज़ महफूज है। आप पर उस वक्त भी जान निछावर करने वाले करोड़ों लाखों नहीं भी होंगे तो जितने थे वो जाने निछावर करते थे। वो सिर्फ रैलीस नहीं निकालते थे, वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करते थे, वो बाइकॉट की बात ही नहीं करते थे, बल्कि वो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। वो इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ते थे, वो नबी के बात पे एतबार करते थे, यकीन करते थे हमारे नबी को अल्लाह ने एक मार्फत दी हुई है। वमा यंते को निल हवा इन हुआ इल्ला वाहे यूहा। वो पूरे यकीन से नबी की बात पे हाँ कहते थे, वो सोच में नहीं पड़ जाते थे क्योंकि उनको पता था कि नबी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहमत बना कर भेजा है। तो आज उम्मत मुस्लिमा में इसी दर्द को बेदार करने की ज़रूरत है। आज हम अमली तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे और इस दीन को आम करके, इंसानियत का ये एक तोहफा है मेरे आपके पास, ये अमानत है हमारे पास। हम उम्मत दावा भी हैं और हम मदऊ भी हैं। नबी हमें दावत देकर गए, आज हमने दूसरों को देनी। तो जब किसी की चीज़ आपके पास रखी हो तो वो आपसे लेने तो आएगा ना, क्योंकि आपने दी नहीं, अब उनको लेना आता है। हमने ये अमानत अगर इस्लाम की, कुरान की और नबी का खूबसूरत किरदार दुनिया को दिखाया होता तो आज लोग ऐसे जौक तर जौक हमारे पास आ रहे होते कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि यदखुलू नफी दीनिल्लाहि अफवाजा। लोग तो फौज दर फौज आते थे नबी का अखलाक, फबीमा रहमत मिनल्लाह लिनत लहुम। कुरान तो गुनगाता है, कुरान से प्यारी नात कौन पढ़ेगा नबी की, कुरान से प्यारा तذकरा कौन करेगा। कहीं मुबशिरन और कहीं नज़ीरन बबशीरन और कभी शाहिदन कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मेरी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इस वक्त अगर आज तो वो ये है कि हम अनजान ना रहें, हम बेखबर ना रहें, और अगर अनजान रहे बेखबर रहे तो महरूम रहेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर अगर साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और तामीर की दुनिया में आगे निकल जाएगी तो याद रखिएगा हम भी हर मैदान में लोगों की ज़रूरत बन जाएंगे। हम तो अमानतदार उम्मत हैं, अल्लाह के नबी की सीरत को दिलों तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं। हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी थी कि तुम इस मिशन के राही बनना। हर बच्चा जो मुसलमान घर में पैदा होता है वो एक मिशन लेकर आता है, एक पैगाम लेकर आता है। और ये ईमानदारी, ये जिम्मेदारी और दिलों तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से निकलेगा? क्या महज नफरत के इजहार से? क्या गालियाँ देकर? क्या नबी ने दूसरों को गालियाँ दी थीं? नहीं, हम सीखेंगे रहमतुल आलमीन की सीरत से। और ऐसे हादसे अगर आपकी ज़िंदगियों में होते रहे जो आपको कमोबेश इर्द गिर्द नज़र आते हैं तो क्या वो सोए रहते, एक रैली निकाल कर आकर सो जाते, सुख चैन की बांसुरी बजाते? नहीं, ये तो एक बहुत छोटा सा मुजाहरा होता नफरत का, जिसको वो तवज्जो मिल जाती बस उसके बाद फिर दोबारा दुश्मन आगे आता। नहीं, आज इंशाल्लाह हम गज़वे तबूक के तनाजर में देखेंगे कि अभी तो दुश्मन दूर बैठा है लेकिन अल्लाह के नबी अपने असहाब को किस तरीके से इन चीज़ों के लिए तैयार करते थे। और याद रखिए कि एक हवा का मुखालिफ झोंका आए और हम खड़े हो जाएं और फिर खैबर नेशन की फॉर्म में चले जाएं, फिर सो जाएं, फिर अपनी खुशियाँ, शादियाँ, गम, दुख, तो ये कोई बात नहीं है। एक महीना के आए हम सारे नबी से मोहब्बत के दावेदार बन जाएं और जब चांद जाए और 12 ही गुजर जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी ज़िंदगियों में, तो ये अच्छे लोगों की बात नहीं। हमने इस नियत से आज सीरत का ये सफ़र शुरू करना है कि हमने अपने आप को नबी के किरदार में ढालना है। आप चलता फिरता नमूना थे, हमने भी इसी की कोशिश करनी है। और याद रखिए, एक चलती हुई शम्मा कई और शम्में जलाती है। अपने शोले से तो अगर दिलों में मोहब्बत ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन ही है, आपके दिल में वाकई अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, बड़ी आबोताब से आपका दिल चमक रहा है नबी की मोहब्बत से, तो आइए चलिए दूसरों को भी इस मोहब्बत के चिरागों से जलाते जाइए। उनको भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत दीजिए। आपके दिल में एक पायलट फ्लेम ही क्यों ना हो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का ये वक्त है, ये ज़रूरत है कि हम आपकी सीरत के ज़रिए चारों तरफ खुशबू फैला दें। और अगर किसी को ये अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि आप इसी को अपने काम से काम रखते हुए आगे से आगे लेते जाएं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मुसलमानों को एक अजीब सी ताकत दी है। सच्चे ईमान में वो ताकत होती है जो दुनिया की किसी खुराक में नहीं, किसी गजा में नहीं है। ईमान जुरत का नाम है। ईमान इंसान को बेखौफ व खतर कर देता है। और याद रखिए कि दीन को इंसाले फितरत लोगों तक पहुंचाना जो इससे नाशना है और इसके फैज से महरूम है, जो इस हस्ती की ज़ात और सिफात से बेखबर है, इसलिए इस बात से भी ना लें कि इनके घर के बराबर रहने वाला, जिसने कई सालों में आज तक एक बार इस्लाम के बारे में नहीं सोचा। तो ये सारी सोचे रखते हुए आइए शुरू करते हैं। इस वक्त आपने इस सोच के साथ सुनना है कि आज के दौर में हमें क्या करने की ज़रूरत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस दीन के पौधे को सींचा और फिर बहार आई, और सहाबा ने क्या कुर्बानियाँ दी, क्या वो कुव्वत थी, क्या वो जुरत थी। इस दुआ के साथ शुरू करती हूँ कि अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, मुझे हक को हक पहुँचाने वाला बना दे और मुझे तौफीक दे कि मैं नबी की सीरत का हक अदा कर सकूँ और उन असहाब के किस्से बयान करते करते अपना मुहासबा भी कर सकूँ, वो कौन थे, वो कैसे थे। तो याद रखिए कि गज़वे तबूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे आखिरी बड़ा मार्का था। गज़वे फतेह मक्का हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। गुजर गया सन 8 हिजरी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर कोई बहुत सारा खून बहाए मक्का को फतह कर लिया। इस मार्के के बाद अहले अरब के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में कोई शक बाकी नहीं रह गया था। इसीलिए हालात की रफ़्तार यकसर बदल गई और लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फौज दाखिल हो गए। इसका कुछ अंदाज़ा इन तफसीलात से लगेगा जिन्हें हम वफूद के बाब में इस बुक के एंड पे पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जो हज्जतुल विदा में हाजिर हुए थे उससे कई गुना ज्यादा लोग आगे आ गए। आप कह लीजिए कि अंदरूनी मुश्किलात का तकरीबन खात्मा हो चुका है, यानी अरब और अरब के इर्द गिर्द मक्का मदीना हजाज यहाँ सब ने एडमिट कर लिया कि हम इस ताकत को बढ़ने से नहीं रोक सकते, और हम कहें ना कहें कि अशहदु अन्ना, लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको हमारी गवाहियों की ज़रूरत नहीं है। अब बाहर की दुनिया से निपटने का वक्त आ और मुसलमान शरीयत इलाही की तालीम आम करने और इस्लाम की दावत फैलाने के लिए यकसू हो गए। तो इसको नोट कीजिएगा, मुसलमान की ज़िंदगी में एक दिन बेकारियत का नहीं होता। अंदर की मुश्किलात ख़त्म तो बाहर की, घर वाले मुसलमान हो गए तो बाहर गली वाले, गली या तो मोहल्ला, मुल्क, शहर और फिर पूरा ग्लोब। हमारे पास तो वो काम है कि जिसमें ना पेंशन है ना जिसमें ले ऑफ का खतरा है। मुसलमान तो इतना मसरूफ होता है दिन रात, क्योंकि वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। आइए देखते हैं कि इस गजवे का सबब क्या हुआ। और ये गजवा जो तारीख में इतना मारूफ है, कुरान पाक की कितनी आयतें, एक पूरी सूरत तौबा इसके नाम हो गई। वजह क्या है? इसलिए कि यह आखिरी गजवा था। एक तो इसमें मोमिनों का ईमान और निफाक खुल के छट के बाहर आता है, और दूसरी ऐसी आखिरी कीलें ठोकी जा रही थी कि अल्लाह के नबी अपने पीछे एक ऐसा गिरोह छोड़कर जाएं कि जब मैं इधर से उधर हूँ तो पीछे वाले हिले नहीं, हर फितने के आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाएं। तो गजवे का सबब यह था कि एक ऐसी ताकत का रुख मदीना की तरफ हो चुका था जो किसी वजह जवाज के बगैर मुसलमानों से छेड़छाड़ कर रही थी। ये ताकत रूमियों की थी, रोमन्स, जो उस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी फौजी कुव्वत की हैसियत रखती थी, यानी आप कह सकते हैं उस दौर की एक बड़ी सुपर पावर थी। और हम पीछे पढ़ चुके कि इसकी छेड़छाड़ की इब्तदा शुरखबील बिन अमर गस्सानी के रहातो नबी सल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर अज़दी के कत्ल से हुई थी, जबकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर बुसरा के हुक्मरान के पास तशरीफ़ ले गए थे। और हम पीछे ये भी पढ़ चुके हैं कि नबी सल्लम ने इसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की सरकर्दगी में एक लश्कर भेजा था जिसने रूमियों से मूता की सरजमीन में खौफनाक टक्कर ली, जिसको गज़वे मूता कहते हैं। मगर ये लश्कर इन मुतकब्बिर जालिमों से इंतकाम लेने में कामयाब ना हुआ। अलबत्ता इसने दूर और नज़दीक के अरब बाशिंदों पर नहायत बेहतरीन असरात छोड़े। तो आप इसका खुलासा कर लीजिए कि उस दौर की एक बड़ी ताकत ने मुसलमानों से रात जाते छेड़खानी की कि हम मदीना पे हमला करते हैं, मुसलमानों को ज़िच करते हैं और साथ ही अल्लाह के नबी के कासिद को जो कत्ल किया वो उस दौर में भी ऐलान जंग होता था। ये सारी खबरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही थी। कैसरे रोम इन असरात को और इसके नतीजे में अरब कबाइल के अंदर रोम से आज़ादी और मुसलमानों की हमनिवाई के लिए पैदा होने वाले जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसके लिए एक खतरा था क्या कि जो कदम ब कदम इसकी सरहद की तरफ बढ़ रहा है और अरब से मिली हुई सरहद शाम के लिए चैलेंज बनता जा रहा था। क्या पता चला कि उस वक्त की बड़ी ताकतों को फिक्र ये लग गई कि मक्का भी मुसलमान हो गया, मदीना तो पहले से था, इर्द गिर्द भी इस्लाम हो गया, कबायली लोग भी मुसलमान हो गए, बद्दुओं ने भी सरेंडर किया। अब हो ना हो इस्लाम की ये आग फैल कर हमारे मुल्कों में ना आए। याद रखिए कल और आज यही मसला है। सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा खतरा जो फिरौन को भी मूसा के दौर में क्या था कि तुम मेरे तरीकतुल मुसला को बदल दोगे, तुम मेरे लाइफस्टाइल, मेरे कल्चर को बदल दोगे। तो लिहाजा आप कह लीजिए ये कुछ खौफ थे उनके दिलों में जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के इस मुल्क यानी अरब के इर्द गिर्द कुछ चैमगोइयाँ हो रही थी। कैसर यानी कैसरे रोम समझते ही आप, लकब था उस दौर के रोमन बादशाहों का। तो उसने सोचा कि मुसलमानों की कुव्वत को एक अजीम और नाकाबले शिकस्त खतरे की सूरत इख्तियार करने से पहले पहले कुचल देना चाहिए, यानी इससे पहले कि ये हम तक पहुंचे हम इनको ख़त्म कर दें ताकि रूम से मिले हुए अरब इलाकों में फितने और हंगामे सर न उठा सके। नोट कीजिएगा ये जुमला, इस्लाम को वो फितना और हंगामा कह रहे थे। इन सारी मसलहतों के पेश नज़र अभी जंगे मूता पर एक साल भी ना गुजरा था कि कैसर ने रोमी बाशिंदों और अपने मातहत अरबों यानी आले गस्सान वगैरह पर मुश्तमिल फौज की फराहमी शुरू कर दी और एक खून रेज और फैसला कुन मार्के की तैयारी में लग गया। क्या पता चला कि वो मुसलमानों को प्रवोक कर रहे थे कि इनको गुस्सा दिलाओ, इनको चिड़चिड़ाओ। और याद रखिए अगर अल्लाह के नबी की तरबियत ना की गई होती तो हो सकता है कि कुछ जज्बाती सहाबा कुछ ऐसा काम करते। यह अमल की बात लिखिए, चाहे कल के कैसर और किसरा थे या मुस्तकबिल में कोई ऐसा मामला हो, हमेशा याद रखिए रिएक्शनरी होने से बात नहीं बनेगी। आग को आग से नहीं पानी से बुझाते हैं, हवा लगाने से आग फैलती है, पानी डालने से बुझती है। तो मुसलमान आज के दौर में अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर सिर्फ इस एक गजबे को आप आज के तनाजर में समझ लें तो आप देख सकते हैं कि क्या करने के काम है। हमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। प्यारे नबी की ज़िंदगी इसीलिए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। देखिए बड़ों के तजुर्बों से जो लोग फ़ायदे नहीं उठाते ना, फिर वो धक्के खा खा के आखिर अपनी उम्र के आखिरी दौर में कहते हैं बाप सही कहता था, माँ सही कहती थी। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो आप खुद भी माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बाकार हो चुके। जाने से पहले अपने बच्चों को सिखा जाइए कि तुम वो ना करना जो हमने किया। आज के मुसलमानों को भी इसी तरह सोचने की ज़रूरत है। अब हुआ क्या कि रोम और गस्सान जो उस वक़्त की ताकतें थी उनकी तैयारियों की खबरें आम हो गई। यानी उस वक़्त मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था, प्रिंट मीडिया भी नहीं था, बात ऐसे मुंह दर मुंह होकर जाती थी। मदीना कहाँ और तबुक किधर, और कहाँ फिर वो हिरकल का मुल्क और रोम। तो लिहाजा बातें फैलते फैलते हल्की हल्की आ गई। मदीना में खबरें पहुंच रही थी कि रूमी मुसलमानों के खिलाफ एक फैसला कुन मार्के की तैयारी कर रहे हैं। यानी इसको आज की जुबान में कहे कि मुसलमानों को खबर मिली कि सरहदों पे फौजें खड़ी की जा रही हैं ताकि मुसलमानों पे हमला किया जाए। इसकी वजह से मुसलमानों को हर वक्त खटका यानी धड़का लगा रहता था कि इनके कान किसी भी गैर मानूस आवाज को सुनकर फौरन खड़े हो जाते थे। वो समझते थे कि रोमियों का रेला आ गया है। इसका अंदाजा इस वाक्य से होता है कि इसी यानी सन 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाजे मुतहरात से नाराज होकर 1 महीने के लिए हीला कर लिया था। आप सब जानते हैं सन 9 हिजरी में आपने अपनी अजवाज से 1 माह का हीला किया और इन्हें छोड़कर एक घर के ऊपर वाले हिस्से में अलहदा हो गए। साहबे कराम को शुरू में तो बात समझ ना आई क्योंकि वो कुरैत नहीं रखते थे, कोई बात ना बताए तो पूछते भी नहीं थे। लिहाजा बात क्या फैली कि उन्होंने समझा कि अल्लाह के नबी ने तलाक दे दी है। इसकी वजह से साहबा में शदीद रंज और गम फैल गया। और वजह आप जानते हैं कि अबू बकर की भी बेटी आपके घर में और उमर की बेटी भी घर में। और हज़रत उमर जब कभी इस किस्से को बयान करते थे तो कहते थे कि मेरा एक अंसारी साथी था, जब मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में मौजूद ना रहता तो वो मेरे पास खबर लाता था और जब वो मौजूद ना होता तो मैं आपके पास खबर ले जाता। मुराद क्या है कि इन्होंने बारियां लगाई हुई थी कि कुछ वक्त तुम कमाया करो तो मैं नबी की सोहबत से फैज लूंगा और दूसरे वक्त में तुम ले लिया करो, और इस तरह से एक से दूसरे से इल्म लेते थे। ये दोनों ही मदीना के बिल्कुल अवाली हिस्से में रहते थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। और बारी बारी अल्लाह के नबी के पास आते थे, यानी टर्न्स थी, एक सुबह में आ जाता था, एक शाम में आ जाता था, इस तरह से। इस ज़माने में हमें शाह गस्सान का ख़तरा लगा हुआ था। हमें बताया गया कि वो हम पर हमला करना चाहता है, और इसके डर से हमारे सीने भरे हुए थे। एक रोज़ अचानक मेरा अंसारी साथी दरवाज़ा पीटने लगा और कहने लगा, खोलो खोलो। मैंने कहा, क्या गस्सानी आ गए? यानी इतना ख़तरा था, ज़रा इमेजिन तो कीजिए। आज का मुसलमान ये सोचे तो उसका कलेजा हलक में आ जाए। कि हल्की सी आवाज़ पड़ती थी तो खौफ आता था कि हमला कर दिया, इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी ताकत ने। लेकिन उसका जवाब क्या था? नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी बात हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलहदा हो गए हैं। एक दूसरी रिवायत में यहाँ तक आता है कि हज़रत उमर कहते हैं कि हम में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि आले गस्सान हम पर हमला करने के लिए घोड़ों के कदमों में नाल लगवा रहे हैं, यानी अपने घोड़े तेज़ कर रहे हैं उनके कदम। और एक रोज़ मेरा साथी अपनी बारी पर गया और ईशा के वह वापस आया, मेरा दरवाज़ा बड़े ज़ोर से पीटा और कहने लगा, क्या हुआ? वो उमर सोया हुआ है? मैं घबरा के बाहर निकला। उसने कहा, बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ? क्या गस्सानी आ गए? इसने कहा, नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा और लंबा हादसा, क्या के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। याद रखिए कि इला और तलाक का फ़र्क क्या है, कि औरत के पास ना जाने की कसम खा लेना, इसको इला कहते हैं, यानी शौहर अपना इज़दवाजी हक इस्तेमाल नहीं करता। अगर ये 4 माह की कसम हो या इससे कम मुद्दत हो तो शरण कोई हुक्म नहीं है। जब 4 माह पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर औरत को इजाज़त है कि वो अदालत के थ्रू या तो उससे खुला लेगी या उसके साथ रहने के लिए उसको मजबूर करेगी। तो बहरहाल ये सारे मसाइल तो हम सूरत बकरा में पढ़ते ही हैं, लेकिन इतना खौफ था, आप ज़रा इस वक्त को इमेजिन तो कीजिए, क्या खौफ का आलम था उस वक्त, कि बात कुछ और थी और हज़रत उमर कुछ और समझे। इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाइए जो इस वक्त रूमियों की जानिब से मुसलमानों को पेश थी। और इसमें मज़ीद इजाफा हुआ मुनाफिकीन की बातों से, जो हर वक्त अफवाहें फैलाते, ऐसी कोशिशें करते और उल्टी सीधी बातें मारूफ करते कि जी रूमियों ने तैयारी कर ली, मदीना पहुंचने वाले हैं। देखिए आज की ज़ुबान में समझाऊं, व्हाट्सएप मैसेजेस, स्नैपचैट और इसी तरह फेसबुक और बाकी नाम तो पुराने हो गए। ये आज के दौर के स्नैप एक एक सेकंड की खबरें दुनिया को देते हैं ना, उस दौर का सोशल मीडिया मुनाफिकीन थे। हर वो चीज़ जिससे मुसलमानों में खौफ भरे, वो हर चीज़ जिससे मुसलमान परेशान हो, इनकी ज़ुबानों पे आम होती थी। इनका काम ही था इधर से उठ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जा, और लकड़ियाँ लगाते थे, गीबतें और इस तरह की अफवाहें फैलाते थे। अब ये होने लगा है, वो होने लगा है, और ये एक बड़ा खामोश सवार होता है। हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं सिर्फ खौफ और हिरास फैलाने वाले। और मुनाफिकीन ये भी देख चुके थे कि अल्लाह के नबी हर मैदान में कामयाब है और ज़मीन की कोई ताकत ऐसी नहीं जिससे आप डरें, बल्कि जो रुकावटें आपके रास्ते में आती हैं वो भी पाश पाश हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि इनसे टकरा के पत्थर भी टूट गए, दोनी मिन की ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। उनको ये फिक्र था। इसके बावजूद इन मुनाफिकों ने ये उम्मीद बांध ली कि मुसलमानों के खिलाफ, जो उनके अपने सीनों में बहुत दिनों से एक ख्वाहिश छुपी हुई थी कि मुसलमान किसी फितने का शिकार हों, कोई गर्दिश दौरा इन पर आए, और इसका वक्त अब करीब था। यानी वो दिल से चाहते थे कि कोई मुसलमानों को मारे, इनके ऊपर हमले करे, और हम तो अब नहीं कर सकते, कोई बाहर से बड़ी ताकत ही आ जाए। चुनाचे अपने इसी तसव्वुर की बिना पर उन्होंने एक मस्जिद की तश्कील की जिसको कुरान में सूरत तौबा में मस्जिद दीरार कहा गया। असल में वो क्या थी? मस्जिद दीरार, उसके अंदर साजिशें थीं, उसके अंदर फितना फैलाने की बातें थी, फिरका वारियत थी, यानी मकासिद सारे कुफर को सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन असल में नाम वो उस पर मस्जिद का देते थे। और एक साजिश थी जिसकी बुनियाद अहले ईमान के दरमियान में तफरकाबाजी और अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर और इनसे लड़ने वालों के लिए घात की जगह फराहम करने के नापाक मकसद पर रखी हुई थी। अल्लाह के नबी से गुजारिश की गई कि आप इसमें नमाज पढ़ा दें। इससे मुनाफिकीन का मकसद पता क्या था? ये देखिए, इसको कहते लीगलाइज कराना, एक मैसेज ले लेंगे, उसको लेके आगे चल पड़ेंगे। हमने तो पूछ लिया था, हमने तो बता दिया था ये टोन होती है इसमें। खैर, उनका ख्याल क्या था कि अहले ईमान को इससे फरेब देंगे, तब ही नहीं लगने देंगे। इस मस्जिद में इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और हम इतने प्लान्स बनाते हैं, असल में तो उनका मीटिंग रूम था, और मुसलमान इस मस्जिद में आने जाने वालों पर कोई नजर नहीं रखेंगे। इस तरह ये मस्जिद मुनाफिकीन और इनके बाहर से आने वाले जो दोस्त थे, जो ऐसी साजिशें करते थे, उनके लिए एक बड़ा पुरअमन सा घोंसला बन जाएगा, या कह लीजिए एक भटका काम देगा जिसमें जानवर जाके ये लोमड़ी छुप जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस मस्जिद में नमाज की अदायगी को जंग से वापसी के लिए पोस्टपोन कर दिया, मौखिर कर दिया, क्योंकि आप तैयारी में मशगूल थे। और इस तरह मुनाफिकीन अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, और अल्लाह ने इनका पर्दा वापसी से पहले ही चाक कर दिया। चुनाचे आपने गजबे से वापस आकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय इसे गिरा दिया। तो यहाँ तक की बात से आपको क्या समझ आया? तारीख अपने आप को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बिल्कुल यही कैफियत है, हर दौर में ऐसी कोशिशें होती रहीं, और अल्लाह के नबी ने कैसे स्टैंड लिया। इस वक्त अगर ज़रा से इमेजिन कीजिए कि ये वक्त मुसलमानों के लिए कितना कठिन था, कि दुश्मन, और दुश्मन एक नहीं उस वक्त की बड़ी ताकत, और मिल के इर्द गिर्द वालों को जमा करके मुसलमानों के खिलाफ फौजें इकट्ठी कर रहे हैं। क्या ये सुनहरियो आज हमें समझ आता है? कितना बिग चैलेंज, खौफ होता, घरों में घुस जाते, टॉयलेट पेपर जमा कर लो कहीं जंग ना लग जाए, हाय खाना जमा कर लो। आज का मुसलमान होता घरों को छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोरों में बदल चुका होता, और दुबक दुबक के, और फिर क्या करते, जाओ ज़रा अल्लाह के नबी से कहो कि जाके माफ़ी मांग लें, एक अच्छा सा खत लिख दें, उनको कोई एक अच्छा पैगाम दे दें, हम सब एक हैं, और ये वो। यानी आज अमूमन ऐसे मौक़ों पे ऐसे ही सोचा जाता है कि मशरूत मुसालियत कर लो, अपने हकूक़ दे दो, अपनी जगह ज़मीनें दे दो, और गैरों से डर दो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ये है आज के दौर का करने का काम। जिस तरह याद रखिए कि इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक हम तक पहुँचे हैं, क़यामत तक वही कवानीन, वही असूल रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि रूम और गस्सान की तैयारियों की ख़ास खबरें क्या पहुंच रही थी अल्लाह के नबी के पास। ज़ाहिर है कि जब दूसरों को ये क्योस दिख रहा था तो अल्लाह के नबी को भी दिखता था, लेकिन अल्लाह ने आपको एक इत्मीनान दिया हुआ था, आप पुरसकून शख्सियत है, आप छोटी छोटी बात पे घबराते नहीं थे, और अपने लिए ये मांगिए, इसके बगैर तो इंसान यकीन करें कि एक सेकंड ना जिए। तो हम देखेंगे कि उस वक्त की दो बड़ी ताकतें, एक रोम और एक गस्सान, वो दोनों और उनके हुक्मरानों ने क्या तैयारियां की, और उसकी खबरें जब नबी सल्लम तक पहुंची तो आपने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया। इन हालात और खबरों का सामना मुसलमान कर ही रहे थे कि इन्हें अचानक मुल्क शाम से तेल लेकर आने वाले निबतियों, ये निबतियों जो है ना असल में हजरत इस्माइल के एक बेटे थे नाबित, उनकी नस्ल है, जो उस वक्त शिमाली हिजाज में एक बड़े अरूज वाली कौम थी, और जवाल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग मामूली किसानों और ताजरों के दर्जे में आ गए। उस वक़्त में बहरहाल इनकी शोहरत थी। तो तेल लेकर आने वाले एक गिरोह से पता चला कि हिरकल ने 40,000 सिपाहियों का एक बड़ा लश्कर तैयार किया है, और रूम के एक अजीम कमांडर को इसकी कमान सौंप दी है, और अपने झंडे तले ईसाई कबाइल जिसमें लखम और जिजाम ये दो कबीले हैं, इनको भी जमा कर लिया है, और इनका हरावल दस्ता यानी पहला दस्ता वो बिलेका पहुंच चुका है, एक इलाके का नाम है। और इस तरह एक बड़ा खतरा मुजस्सम होकर मुसलमानों के सामने आ गया। यानी पहले तो सिर्फ खबरें थी ना, अब खबर मिल गई कि एक दस्ता निकल पड़ा है मुसलमानों से जंग करने। ज़रा हालात की नज़ाकत को नोट कीजिए, महसूस कीजिए, और भी हालात खतरनाक हो गए ना। फिर जिस बात से सूरत हाल की नज़ाकत में मज़ीद इजाफा हो रहा था वो ये थी, अब इसमें से एक एक बात दिल पे लेने की है। ज़माना सख्त गर्मी का था, लोग तंगी और कहत साली की आजमाइश से दो चार थे, सवारियाँ कम थीं, फल पक चुके थे, इसलिए लोग फल और साय में रहना चाहते थे और फौरी रवानगी नहीं चाहते थे। और इससे बढ़कर यह कि मुसाफत की दूरी और रास्ते की पेचीदगी और दुश्वारी थी। यानी अपने ऊपर लीजिए, जून जुलाई की गर्मी हो, बारिशें भी नहीं हो रही, खड़ी फसलें तैयार हैं कि बारिश हो तो काटे, पूरे साल की मेहनत, सवारियां बहुत थोड़ी, फल पके हुए हैं जिसको काटेंगे तो पूरा साल खाएंगे, यही उनकी गुजर बसर थी। और आम लोगों की तो यही मर्जी थी कि अभी ना जाएं। और सबसे बड़ी बात, इतना दूर, आप देखिए मदीना से तबूक आज भी आप जाएं तो 8-10 घंटे लगेंगे गाड़ियों पे, तकरीबन 1 महीने से कुछ कम की मुसाफत थी, और रास्ता भी दुश्वार। अब ज़रा इमेजिनेशन में लाइए, लोग बैठे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं कि अब क्या हुक्म है, क्या इशारा है, और अल्लाह के नबी क्या इस मामले को देखते हैं। कुछ ना कुछ तो जहन में हमारे नक्शा बनेगा ही ना, क्योंकि सीरत पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि इसकी वजह से हमारे दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दर्द को समझने का और उसको पाने का एक पूरा एहसास पैदा होता है। तो आइए देखते हैं कि लोगों की तो ये हालत थी, लेकिन लीडर की क्या मर्ज़ी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कतई इकदाम का फ़ैसला, दिल चाह रहा है कहूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों दुरूद रहमतें उस जान पे। हकीकत में यकीन करें कि ऐसी शायरी और ऐसी अल्लाह के नबी के बारे में बातें पढ़कर दिल में रिक्कत आती है, इसमें कोई शक नहीं है। उस रहमत पे करोड़ों दुरूदो सलाम, कैसे दिल नबी की मोहब्बत से भरता है। लेकिन जो इस वक्त ये पढ़ते वक्त दिल की कैफियत होती है उसको भी महसूस करें। हमारा दीन अमली दीन है। अल्लाह के नबी एक शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े थे उन लोगों के सामने। हमारे न खाने में फ़र्क पड़े, न पीने में फ़र्क पड़े, न शॉपिंग में फ़र्क पड़े, और हमारी ज़िंदगी अब जिस जकड़बंदी में आज के लॉकडाउन में है, ये मजबूरियों में फंसे में आज मौका मिले, देखिए कैसे बाजार गर्म है और क्या कुछ होता है। लेकिन आइए हमारा ताल्लुक़ किस लीडर से है, पहले तो दुआ करें अल्लाह हमें ऐसे लीडर दे और फिर उनकी कदर भी करने की तौफीक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात और तगैयुरात यानी तब्दीलियों का मुतालिया कहीं ज़्यादा दिक्कते नज़र से फरमाया। ये होती है लीडर की निगाह, इसको कहते हैं निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। अल्लाह आपको लीडर्स बनाए तो वो नज़र भी तो दे कि जो दिक्कत वाली हो, जिससे आपको इतनी बारीकियां दिखे, जैसे एक इंजीनियर की नज़र है कि वो एक एक पेज को देखता है, एक एक जोड़ को देखता है। आप जिस कंप्यूटर को देख रहे होंगे आपको तो एक खूबसूरत सी स्क्रीन दिखती है ना, लेकिन एक मैकेनिक जब इसको खोल के अंदर से देखेगा, एक एक शॉर्ट सर्कट उसको नज़र आता है, वो उसके जोड़ सीधे करता है, आपकी स्क्रीन ठीक हो जाती है। आपकी सारी टेक्निकल चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक कब होती हैं, जब कोई समझने वाला आ जाता है। ख़राब कब होती हैं, जब आप लोग होते हैं जिनको करना नहीं आता, और मैं होती हूँ जिसको छेड़ना नहीं आता। अल्लाह के नबी की निगाह दिक्कत वाली थी, और वही ठीक कर सकता है जिसको दूर रस देखना आता हो। आप समझ रहे थे कि अगर आपने इन फैसलाकुन लम्हात में रूमियों से जंग लड़ने में काहली और सुस्ती से काम लिया, रूमियों को मुसलमानों के ज़ेर असर इलाके में घुसने दिया और वो मदीना तक बढ़ और चढ़ाए, तो इस्लामी दावत पर इसके नहायत बुरे असरात मुरतब होंगे। मुसलमानों की फौजी साख उखड़ जाएगी, और वो जाहिलियत जो जंगे हुनैन में कारी जरब लगने के बाद आखिरी दम तोड़ रही है, दोबारा जिंदा हो जाएगी। और मुनाफिकीन जो मुसलमानों पर गर्दिशे ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं, और अबू आमिर फासिक जिसने वो मस्जिद बनवाई थी मस्जिद दिरार, उसके ज़रिए शाह रूम से राबता कायम किए हुए थे, यानी मुखबर थे ये असल में, और अल्लाह के नबी को क्या कह रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं, यहाँ बस इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ दीजिए। असल में ये फासिक शख्स था। पीछे से ऐन इस वक्त मुसलमानों के शिकम में खंजर घोंप देंगे, जब आगे से रूमियों का रैला इन पर खूनख्वार हमले कर रहा होगा। इस तरह वो बहुत सारी कोशिशें रायगां चली जाएंगी जो आपने और आपके सहाबे कराम ने इस्लाम की नशरोइशात में सर्व की थी, और बहुत सारी कामयाबियां नाकामी में तब्दील हो जाएंगी जो तवील और खून रेज जंगों और मुसलसल फौजी दौड़ धूप के बाद हासिल की गई थी। इसको हाईलाइट कर सकें तो कर लीजिएगा। बाज़ दफ़ा लीडर्स की मेहनतें ज़ाया हो जाती हैं, पानी पड़ जाता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे इफ्स एंड बट्स की नज़र हो जाती हैं। और अल्लाह के नबी ने यह पौधा कैसे सींचा था, ये तो आप इससे पीछे बढ़ ही चुके हैं कि कैसे नबी की कोशिशों से कामयाबियों को कैसे लिया और नाकामियां पीछे हुईं। लेकिन जब गलत स्ट्रेटजीज होती हैं तो फिर याद रखिए कि वाए नाकामी कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। तो यहाँ ऐसा ही कुछ मंजर बनने वाला था। अल्लाह के नबी इन नतायज को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए उसरत और शिद्दत के बावजूद आपने तय किया कि रूमियों को दारुस्सलाम की तरफ पेश कदमी की मोहलत दिए बगैर खुद इनके इलाके और हदूद में घुस कर इनके खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ी जाए। रिस्क टेकर वाज माई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ी खूबी है एक लीडर की कि वो रिस्क लेना जानता हो। लेकिन बात यह है कि अल्लाह के नबी ने गिव अप नहीं किया। सारे लोग मदीना के कह लीजिए कि अंदर से नहीं चाहते थे कि अभी जाएं, एक तो शिद्दत गर्मी की और एक भूख। असबा हम कहते तैयारी किधर है, इस्लाम मीन्स को सिखाता है, इस्लाम कहता है पहले चीज़ें देखो। देखिए माजरत के साथ आज हमारा ताल्लुक है, पहले लिख के दें कि फतह होगी फिर आपके साथ निकलेंगे, पहले लिख के दें शिकस्त नहीं होगी फिर जाएंगे आपके साथ, फिर इस काम में हाथ डालेंगे नहीं तो नहीं डालेंगे। صحابہ کرام نے نہ فتح دیکھی نہ شکست دیکھی، انہوں نے حق دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا سچ دیکھا کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا. جب اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ نے کوئی تسلیاں دی ہوں گی نا. تو یاد رکھیے، یہ صحابہ کا گروہ ایسا گروہ تھا کہ آج تک نہ زمین نے دیکھا نہ دیکھے گا. اللہ کے نبی کا فیصلہ، اب آگے بولے کون؟ آپ نے ایک کہا کہ ہم آگے، ہم وہ کیوں آئے، ہم آئیں گے، فرق کیا تھا؟ نوٹ کیجئے، اگر وہ آ جاتے اور مسلمانوں کو مدینہ میں دفاع کرنا پڑتا تو جنگ ہوتی دفاعی، رائٹ؟ ڈیفنسو وار ہوتی. اب ہوگی اوفینسو، اقدامی جنگ. اور ہمیشہ یاد رکھیے، اوفینسو اور ڈیفنسو کا یہی فرق ہے، کبھی ڈیفنسو بندے کو آپ جیتتا نہیں دیکھیں گے دنیا کی کسی جنگ میں، چاہے وہ تبوک ہو یا کوئی اور جنگ ہو. ہمیشہ وہی جیتتا ہے جو اوپر سے چڑھائی کرتا ہے، جرت. اور اللہ کے نبی ایسے ہی تھے. چلیے دیکھتے ہیں کہ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان کیسے ہوا اور کیا ہوا. یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کرے. قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑے. آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے باعث اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، یعنی چھپایا نہیں، ویری کلیئر، سب کو بتا دو کدھر جا رہے ہیں. آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی، اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورت توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا. ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی. اللہ اکبر کبیرہ. پوری سورت توبہ کی ایک ایک آیت نظروں میں لائیے، آپ سب کئی بار پڑھ چکے ہوں گے مجھے یقین ہے اس کا. وحرِّد المومنین علی القتال. آئیے دیکھتے ہیں کہ غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ کیا تھی، یعنی کیا انہوں نے پھر نبی کے قدم سے قدم ملایا یا گھر بیٹھ گئے، الگ ہو گئے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو عبداللہ بن ابی تھا نا، کہ احد کے موقع پہ گھر بیٹھ گیا، پہلے نہیں بیٹھا، راستے میں نکل گیا کیونکہ میری نہیں مانی گئی. یاد رکھیے، بہترین ٹیم وہ ہوتی ہے جو اپنے لیڈر پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور پھر بات سمجھ آئے نہ آئے، اس میں خیر دکھے یا شر دکھے، جانے جانے کا بھی ڈر ہو، وہ پھر افس اینڈ بٹس میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، جو آپ نے کہا وہی ٹھیک. اور صحابہ کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ تھی، پتہ نہیں ان کی ڈگریاں کیسی تھیں، ان کی گرامر کیسی تھی، ان کی تجوید کیسی تھی، ان کا ترجمہ کیسا تھا، یہ تو نہیں مجھے کہیں پتہ، اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. لیکن ان کی یہ سمع و اطاعت بہت تھی. صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی. قبیلے اور برادریاں ہر جانب، یعنی چاروں طرف سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا. کتنی بڑی بات ہے، ان کو گھر نہیں پیارے، ان کو جان نہیں پیاری، ان کو مال نہیں پیارا، ان کو لمبا سفر نہیں دکھ رہا، ان کو راستے کی صحبتیں نہیں دکھ رہی، سب دکھ رہی تھی، بٹ ٹرسٹ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. صرف تین مسلمان ایگزمپٹڈ ہیں، مسلمان جو مستثنا اس سے کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی. حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مس لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کریں، تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں. اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ لا اجد ما احملکم علیہ تولوا وعینہم تفیض من الدمع خزنا خزنا لا یجد ما ینفقون، 92 آیت ہے سورۃ توبہ کی، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پا رہے. ذرا سا چند لمحے کے لیے اس کو محسوس کیجئے، ہم کبھی روئے کسی نیکی کے موقع سے ہٹنے پہ، کسی اور چیز پہ؟ الا ماشاءاللہ، اللہ کو پتہ ہے ہمارے دلوں کے حال. لیکن بات یہ ہے کہ جن کو نیکیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو تاریخ رقم کرنی ہوتی ہے، وہ ایسے موقعوں پہ پھر ایفس اینڈ بٹس میں نہیں آتے، انا کا شکار نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہائے اب کب کیا کیسے، نہیں چھوڑو پھر صحیح، نیکسٹ ٹائم، ابھی نہیں پھر صحیح، جو کچھ بھی کہہ دیجئے، وہ ساری چیزیں جو تھی اس کے اندر آتی ہیں اور جاتی ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر واقعی اینٹیں بنا لیتا ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. یاد رکھیے، جہاں بھی دین کی کوئی جد و جہد ہوگی، कल के दौर की जंगें, आज के दौर का इल्मी जिहाद, या फिर किसी भी कॉज में इस्लाम के लिए कुछ करना होगा, माल तो चाहिए होगा। और मुनाफिकीन का सबसे बड़ा मसला ही माल होता है। ना उनको जान लगानी होती है अल्लाह के रास्ते में, ना माल लगाना होता है, ना आराम छोड़ सकते हैं, ना अपनी तईशात वाली ज़िंदगी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे वक्तों में फिर दूध का दूध और पानी का पानी दिखता है। इसी तरह मुसलमानों ने सदका खैरात करने में भी एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश की। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह अन्हों ने मुल्क शाम के लिए काफ़िला तैयार किया था, जिसमें पालान और कजावे समेत 200 ऊँट थे, 200 उकिया तकरीबन 29.5 किलो चांदी थी। आपने ये सब सदका कर दिया। इसके बाद 100 ऊँट पालान और कजावे समेत सदका किया। इसके बाद 1,000 दीनार तकरीबन 5.5 किलो सोने के सिक्के ले आए और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में बखेर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें उलटते जाते थे और फरमाते जाते थे, आज के बाद उस्मान जो भी करें इन्हें ज़रर न होगा। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हों ने फिर सदका किया। सोचिएगा, फिर सदका किया और सदका किया, यहाँ तक इनके सदक़े की मकदार नकदी के अलावा 900 ऊँट और 100 घोड़े तक जा पहुँची। इमेजिन भी नहीं कर सकता आज का इंसान, एक घोड़े को एक गाड़ी कहिए, 900 गाड़ियाँ, 100 घोड़ा, कह लीजिए बड़ी गाड़ियाँ, कहीं छोटी गाड़ियाँ, चांदी, दिल नहीं थे इनको, अपनी फिक्र नहीं थी। ज़रा बाकियों का पढ़े फिर इस पे अपना इंशाल्लाह तकाबुल करते हैं कि जब हम अपनी ज़ात पे खर्च करते हैं तो किस दिल से, किस सोच से करते हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ से कैसे होता है मामला। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का सुन लीजिए। 200 ओकिया तकरीबन 29.5 किलो चांदी ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा माल हाजिर खिदमत कर दिया और बाल बच्चों के लिए अल्लाह और रसूल के सिवा कुछ न छोड़ा। उनके सदक़े की मकदार 4,000 दिरहम थी। सबसे पहले यही अपना सदका लेकर तशरीफ़ लाए और रिवायतों में आता है कि सब कुछ ले आए। घर की दीवारों पर छड़ियाँ मार मार कर देख रहे थे कि कुछ बाकी तो नहीं बच गया। ये वही अबू बकर है जिनका पीछे आप जिक्र सुन चुके हैं कि हिजरत के मौके पर नाबीना बाप को खुश करने के लिए सोने के डल्ले तो साथ ले गए और उसकी जगह पत्थर बड़े बड़े डाल दिए कि बाप समझे सोना है। ये करना पड़ता है फिर दीन के पौधे पे बहार आती है। आज हम सब अपना सब कुछ जो हमारे बैंकों में, जो हमारे घरों में, जो लॉकरों में, जो दफन शुदा है, उसको निकाल कर रखे हैं इस्लाम के नाम पे। देखिए कैसे इस्लाम के पौधे पे बहार आती। जगह जगह सेंटर्स बनाइए, हिदायत के, तबलीग के दावा सेंटर्स बनाइए, इस्लाम फैलाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, औरतों को पढ़ाइए, फिर देखिए किसी की जरूरत नहीं होगी। हमने बेचारों को दीन का कुछ पैगाम दिया ना, और सिर्फ हम सुखी बातें करके दीन का दिफा करेंगे तो ये नहीं हो सकता। फिर हज़रत उमर ने अपना आधा माल खैरात किया। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हो बहुत सा माल लाए। हज़रत तलहा, सात बिन उबादा और मोहम्मद बिन मुस्लिमा भी काफ़ी माल लाए। हज़रत आसिम बिन अदी 90 वसक यानी तकरीबन 13,500 किलो, कह लीजिए 13.5 टन खजूरें लेकर आए। बकिया साहबा भी पै दर पे अपने थोड़े ज्यादा सदकात ले आए, यहाँ तक कि किसी किसी ने एक मुद या दो मुद सदका भी किया। यानी ये ना सोचिए सबने हजारों ही दिया, कुछ ने थोड़ा सा ही दिया, कि वो इससे ज्यादा की ताकत नहीं रखते थे। औरतों ने भी हार, बाजूबंद, पाजेब, बाली और अंगूठी वगैरह जो कुछ हो सका आपकी खिदमत में भेजा। किसी ने भी अपना हाथ न रोका और बुखल से काम न लिया। सिर्फ मुनाफिकीन थे जो सदकात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों पर ताना जनी करते थे कि ये रियाकार है, और जिसके पास अपनी मशक्क़त के सिवा कुछ ना था इनका मजाक उड़ाते थे कि ये एक दो खजूरें लेकर कैसर की मुमलिकत फतेह करने उठे हैं। ज़रा सोचिए तो सही, अब इन सारी बातों को हमने उस दौर में तो देख ही लिया, अपने तनाजर में देखिए आज के दौर में मुसलमानों को क्या करना है। अपने लिए इतना सा रख ले कि जिसे गुजारा हो जाए और बाकी सब रब को दे दे। अब वो वक्त है कि 2.5 ज़कात नहीं, 97.5 लगाइए अल्लाह के रस्तों में, और 2.5 रखिए अपने और अपने बच्चों के लिए। कूते ला ये मूत पे आ जाइए, तईशात को छोड़िए, अपने सारे एसेट्स इस्लाम के नाम ऐसे निछावर कीजिए जैसे ये आपका बच्चा है या आपका प्यारा है। फिर देखिए दीन के पौधे पे कितनी बहार आती है। ये बड़े प्यार से दीन का पौधा अल्लाह के नबी ने बीज डाला और साहबा ने इसकी आबयारी की। 1,000 साल तक ये काम चलता गया, उसके बाद ग्रोथ क्यों रुक गई, हम सबको सोचना है। आज तो हम सिर्फ ये बातें सुनने का भी वक्त नहीं पाते, हम कहते हैं मसरूफ या तो खाने का वक्त है, इस वक्त बिजी बहुत हूँ। असल में आज बड़ी मुश्किल डिश बनाने खड़ी हो गई, सारा दिन खड़ी, टांगे थक गई, हमारी भी टांगे थकती हैं, उनकी अल्लाह के रस्तों में खड़े होकर चल के थकती थी, हमारी अवन के सामने खड़े होकर थकती है, उनकी भी कमरें दुखती थी, हमारी भी दुखती हैं, फ़र्क है, मैं क्यों किसी से कुछ कहूँ? आप खुद सोचिए, आज के इस पूरे सेशन के बाद आपने मैंने अपने आप से चंद सवाल पूछने हैं। पहला सवाल यह है कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती तो मेरा क्या रद्दे अमल होता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फैसला किया कि हम जाएंगे और बजाय इसके कि वो हम पे हमला करें, हम उन पे हमला करेंगे, तो मेरा उस वक़्त क्या रिएक्शन होता? क्या मैं इफ्स एंड बट्स में पड़ जाती, प्रोज एंड कॉन तोलने लगती, उन लोगों से मशवरे ढूंढती जो कभी भी मुझे हाँ करने की दावत देते, वो तो पहले ही ढीले होते और मेरी बात सुनकर हाँ मैं ये कहती, सब का यही मशवरा है, वो सब कौन? एक पलड़े में सब को डाल दीजिए और एक में मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाल दीजिए, आप देखेंगे कि ये पलड़ा भारी है। साहबा ने कभी मेजोरिटी को नहीं देखा था, अथॉरिटी की बातें नहीं की थी, और ये सब कुछ आज हमें आईना दिखाया जा रहा है। क्या वाकई मैं भी अबू बकर की तरह सारा ही सामान ले आती? क्या मैं भी उमर की तरह आधा सामान? क्या मैं उस्मान गनी की तरह 900 ऊंट दे सकती थी? क्या अब्दुलरहमान की तरह 200 उकिया चांदी मैं देती? क्या मैं अब्बास की तरह बहुत सा माल देती रदी अल्लाह अन्हो, और आसिम बिन अदी की तरह 90 वसक खजूरें देती? देते तो मुबारक हो, इन सब पे यस नो आप खुद लगा के अपने आप को मुबारक दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं माशाल्लाह, कि जो इशारे के मुंतजर है, वो कहते हैं आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, चलिए हम अल्लाह के रास्ते में आपके साथ हैं, और अगर सोचते रह गए तो सोचते रहेंगे इंशाल्लाह। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन इस वक्त जो बात आपको देनी है, हम तो ऐसे वक्तों में दोपहर गर्मी खड़ी फसलें तैयार, कितने इफ्स एंड बट्स होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी अभी आए तो नहीं है ना, सब्र कीजिए प्लीज़, समझते नहीं हैं, आपको हमारे हालात नहीं पता, आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, अल्लाह के नबी सारे साल की फसल है, अल्लाह के नबी गर्मी में मर जाएंगे, हीट स्ट्रोक हो गया तो क्या करेंगे, अल्लाह के नबी देखिए सवारियां कितनी थोड़ी हैं, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, फिर कौन आपके साथ दीन के काम करेगा, अल्लाह के नबी असल में हम फितनों से डरते हैं, देखिए ऐसी सारी चीज़ों को पीछे करें। आप इंशाल्लाह अगला सेशन जब सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे और साहबा के बीच में कितना फ़र्क आ गया है, हमारी तो वेव लेंथ उनसे नहीं मिलती, हमारी सोच उनसे नहीं मिलती, हमारा ईमान बिल्ला और ईमान बिलाखिरा उनसे नहीं मिलता, बस नाम की नस्बतें, बाकी ना हाल ना हुलिया ना शक्ल ना अकल, और अल्लाह का शुक्र है कि नाम हमारा भी अबू बकर है और उमर है और उस्मान है और अली है, दो दो नबियों के नाम मिलाकर, मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इस्माइल, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम किसके? देखते क्या, सुनते क्या, बोलते क्या? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आज के मुसलमान को समझ दिला दे कि जो भी फितने हैं चारों तरफ, ये बीमारियों के फितने, ये घरों में बंद रहने के फितने, इर्द गिर्द की छेड़खानियाँ, ये क्यों हैं, तो फिर इंशाल्लाह हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आपसे मुझसे राज़ी हो जाए और हमें सीरत का ये सफ़र बग़ैर एक सेकंड मिनट भी मिस किए सुनने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।